गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रोफेसर पूरन सिंह जी की एक अमोलक लिखत है, जिसका सिरलेख है एक चमत्कार। आओ प्यार नाल सरवण करन दी कोशिश करिए जी। उस समय रेलां नहीं सन हुंदियां, वाटां भी बहुत ही लंबियां हुंदियां सन, सड़कां भी नहीं सन, मुसाफर औखे सौखे कच्चियां डंडियां ते ही सफ़र करदे। पर उन्हीं दिनी भी प्यार नूं लंबियां वाटां दी परवाह नहीं सी हुंदी। कोई सड़क नहीं, कोई रस्ता नहीं, पर मिलण वाले सारियां औकड़ां झाक के जिवें पंछियां दी तरह उड़ के मिलदे हों। इन्हां समयां विच भी भारत दे दूर उत्तर पछमी सरहदी सूबे दे हज़रों दे लोग पोठोहार दियां कुड़ियां व्याहुण आउंदे, गहने गट्टे नाल सजियां लाड़ियां अपने पेकियां तो सहुरियां दे घर उत्थों वापस आते, फिर अपने सहुरियां दे नवें घर घोड़ियां ते खचरां ते आउंदियां जांदियां। लड़की दे घर आए मेल अते लड़के वालियां दी बरात दा आपस विच मेल मिलाप बहुत ही मज़ेदार हुंदा। लड़कियां दे अपने मापियां तो विछोड़े अते लाड़ियां दे अपने लाड़ियां नाल मिलाप दे दृश्य बहुत ही करुणामयी हुंदे। जदों विछड़दे तां जापदा कि वाटां इन्नियां लंबियां ने जो मुक्कण विच ही ना आवण, पर मेल दी घड़ी विच सारियां वाटां तुछ लगदियां। पुत्रां नूं उडीकदियां मावां, पतियां नूं उडीकदियां पत्नियां अते दूर पेकियां घरी बैठियां लाड़ियां नूं उडीकदे लाड़ियां दियां सैकड़े तांगदियां अखां सड़कां वल लगियां रहिंदियां। जिन्नी वध तांग उन्नी ही उडीक अते मेल ते उन्नी ही वध खुशी हुंदी। आदमी अते औरत दी मिलनी अते एक दूसरे नाल विछोड़ा कमाल दी प्रेम लीला हुंदे। लोकां दियां खुशियां ते गमियां बिल्कुल सतई नहीं सन हुंदियां, उन्हां विच एहसास दी डूंगाई हुंदी सी। मिलण वालियां दी साधारण मुस्कुराहट अते विछड़न वालियां दे साधारण होकियां विच डूंगे अर्थ हुंदे सन। ये फैसला करना बहुत औखा है कि उदों दा जीवन चंगा सी जां हुण दा चंगा है। इन्हां रेलां ते सड़कां आवण तों पहलां दे दिनी पोठोहार दे एक पिंड सागरी विच दूर दुराडे हज़रों तों एक कुल ब्राह्मण आया। वह नवव्याही लाड़ी दे लाड़े दी नीली घोड़ी लै के लाड़ी नूं अपने प्रेमी कोल लै जाण लई आया सी। लाड़ी नूं अपने मापियां कोल रहिंदियां काफ़ी समा हो गया सी। उस दी गोद विच एक मिठा जिहा हंसू हंसू करदा बाल सी। वह अपनी मां नूं पकड़न लई बाहां उलारदा। इस नवजन्मे बच्चे दी खबर उसदे पति नूं पुज चुकी सी अते वह बच्चे दी मां नूं मिलण लई उतावला सी, जिसने उसनूं बच्चे दे रूप विच जिंदगी दा मिठा मेवा दिता सी। लड़की नूं सुपने आउंदे उसदा पति उसनूं किवें मिलेगा, उसदा अंग अंग नशिया जांदा। पति सोचदा कि वह अपने प्यार दे हज़ारां दिन उसदे आई दे कदमां ते रख देवेगा। माँ बाप ने पूरी तैयारी कर ली सी। पोठोहार विच सोहरे जांदे कुड़ी नूं हर वारी ही दहेज दिता जांदा सी। दहेज देखण लई सारा पिंड इकट्ठा होया। बेटी ने बुखारे दे रेशम दा सूट पाया होया सी। उसने हर तरह दे गहने भी पाए हुए सन। जदों अपने पति दी घोड़ी ते बैठ जाण लई पिंडों बाहर निकली तां सब तों कीमती हीरा उसदा बेटा भी उसदी गोदी विच सी। घोड़ी दे गल दा रस्सा कुल ब्राह्मण दे हाथ सी अते घोड़ी दी प्यारी जिही मालकण दे एक हाथ विच लगाम सी ते दूसरे हाथ नाल उसने बच्चा संभालिया होया सी। सारा पिंड उसनूं विदा करन आया। उसदे भरा बहुत दूर तक घोड़ी दे नाल आए। जदों तो बहुत चढ़ाई तां उह वापस मुड़ गए। जो पिछे रह जांदे ने उह छेती भुल जांदे ने। जदों असीं दूर दिसादे ते खड़ियां नूं मिलण लई तांग रहे हुंदे हाँ तां पिछलियां नूं भुलणा वी पैंदा है। सागरी नाल उसनूं बचपन तों ही मोह सी। उत्थों दे लोकां ते थावां दे दृश हुण मन विचों निकलदे जा रहे सन। हुण उह अपनी कल्पना दियां अखां नाल हज़रों नूं जांदे इस राह दे दूर सिरे ते खड़े अपने प्यारे पति नूं उड़ीक करदियां देख रही सी। उसदी पति नूं मिलण दी सिक किन्नी चुप पर किन्नी तीबर सी। हज़रों जांदी उह सुपनियां विच गुआची होई सी। वह सोच रही सी कि हुण तों 10 दिन बाद जदों वह हज़रों पुजेगी तां शाम ढल रही होवेगी, जिस करके उसनूं सारा ही हज़रों प्यारा सी। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੌਣ ਅਤੇ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁੱਝਣ 'ਤੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਜਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਤੜਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਗਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਜਾਗਦਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਸਾਂਝੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਉਸਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਕਿਵੇਂ ਉਛਲ ਉਛਲ ਪਵੇਗਾ, ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਜੁਦਾਈ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੇਜਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵੱਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਹਾੜੀ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਔਜੜ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਨਾਟਾ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਪੁੱਜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਹੇਠ ਬੰਨ ਆਪ ਛਾਵੇਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਟ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਰ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਆਰਾਮ ਲਈ ਹੁੰਦੀ। ਨੀਲੀ ਘੋੜੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੋਹਣੀ ਅਸਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਘਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਘੋੜੀ ਅਟਕ ਗਏ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਵੇ। ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਜ਼ਰੋਂ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਵਸੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪੈਂਡੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਭੱਠ ਚੌਕਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਵੇ। ਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਆਪ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਹਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫਸਿਆ ਰਹੇ? ਉਹ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫਰੇਬ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤ ਅਤੇ ਇਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਖਰ ਸੋਨਾ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਬ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਚਾਲਾਕ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਢ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਸਰ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਥਾਂ ਲੁਟੇਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇਰੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਭੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਬਨਾਰਸ ਜਾ ਕੇ ਅਣਜਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਮਰੀ ਪਈ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲੈ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਵਾਲ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁੜੀਏ ਮੂਰਖੇ, ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਠਾਂ ਉਤਰ। ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਨਵਾਬੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਚੜੇ ਰਹੇ? ਠਾਂ ਉਤਰ, ਬੇਅਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਬੂਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੀ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਡਿੱਗਦੀ ਢਹਿੰਦੀ ਹਜ਼ਰੋਂ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। मैं तुहानू तकलीफ नहीं देनी चाहुंदी, उस लड़की ने कहा। पर हुण वह उतर आई। ब्राह्मण ने घोड़ी का रस्सा अद्धा वट लिया। उसने घोड़ी अद्धे रस्से दे एक सिरे नू बहुत भारी सिल हेठ दे के बन दिती। वो रस्से का दूसरा अद्धा हिस्सा लैके मुड़िया। उस दियां अखां किसे आदमखोर जानवर की तरह लाली नाल भख रही सन। उसने रस्से नाल उस लड़की दे हाथ पैर इकट्ठे करके गिटियां कोलों बन दिते अते उसनू बेबस करके सुट दिता। मैनू तेरे सारे गहने चाहिए ने, तुसी दुकानदार दौलत इकट्ठी करते हो ते असी तुहाड़ियां टुकड़ियां ते पलदे हाँ। मैं हुण ये अन्याय नहीं सह सकता। ये कहिंदिआं एक लुटेरी की तरह उसके गहने लाउण लगा। यह भी परवाह ना की कि उसके कोई जख्म आता है जां सट पेट वजदी है। सारी नकदी अते जेवर लुट के उस एक कपड़े की पोटली विच मन ले। हुण उस लड़की नू मारन की तैयारी की। उसकी चुन्नी लैके उसके गल विच पाई अते वट्टा चाड़ के उसका गल घोटन लग पिया। बच्चे ने अजिहा हुंदा देखिया तां वह डाडा मारन लग पिया। ब्राह्मण डर गया कि बच्चे का रोना सुन के कोई कित्यों आ ही ना जावे अते वो रंगे हाथी ही ना फड़िया जावे। पहला इसनू किसे पत्थर हेठ दबा दें। एक कहिंदिया बच्चे नू मारन लई उस एक पत्थर चुकया, पर मां चीक उठी अते उस मिन्नतां कीतियां। असल विच उसका मूँह बंद करना भुल गया सी। रब दे वास्ते बच्चे नू उस दी मां दियां अखां तो परे लै जा, सामणे ना मार। आखिर तू एक ब्राह्मण की औलाद है, उस लड़की ने कहा। उस बच्चे नू लिया ते घाटी का मोड़ मुड़ के उपर वल चला गया अते उस दियां अखां तो ओझल हो गया। बच्चे नू चुक के लै जाण ते ही मां बेहोश हो गई। वो अपने बच्चे ते हर चीज़ तो लुटी पुटी उस घाटी विच पई सी, जिमें दुनिया का सूरज ही लुटिया गया हो। कई घंटे बीत गए, ब्राह्मण मुड़ के ना आया। जदों उस नू होश आई ते उस अखां खोलियां तां शाम ढल चुकी सी। कुछ आजड़ी अपनियां बकरियां समेत घरां नू परत रहे सन। उसने उन्हां नू आवाज़ दित्ती, उस नू भूत समझ के दौड़ पए। नज़रां सामने ही होण करके उस फिर आवाज़ दित्ती अते अरजोई कीती, मैं सागरी दी धी हाँ, डरो ना, मैं भूत नहीं हाँ। ये सुन के वह कोल आए अते सारी विथिया सुनी। मेरा बच्चा जरूर मार दिता होवेगा ते ब्राह्मण गहने लैके उस पासे वाल दौड़ गया होवेगा। नीली घोड़ी उत्थे एक सिल नाल बन्नी हुई सी, वह घोड़ी ते चढ़ के चला गया होवेगा। मैं मिन्नत करदी हाँ, ये मोड़ मुड़ के मेरा बच्चा मैनू लिया दिओ, मेरे बंधन खोल दिओ, मैनू मेरे मापिया को लै चलो, उन्हां नू पता लगे कि उन्हां दी बेटी ते की बीती है। दो आजड़ी रस्से दियां गंडां खोलण लग पे जिस नाल उसदे हाथ पैर बन्ने हुए सन ते अते एक जना घाटी दे उपरले पासे वल बच्चे दी भाल वे चला गया। घोड़ी उत्थे चुप अते उदास खड़ी सी। ब्राह्मण ठंडा होया पिया सी अते बच्चा एक विराट काले नाग दे कुंडलां विच लिपटिया हस रहा सी। आजड़ी इस भयानक दृश्य तो डर के मुड़ आया अते जो देखिया सी उस लड़की नू दस दिता। बच्चे बारे सोचण दा कोई लाभ नहीं, उसने कहा। एक विकराल सप उस नाल खेड रहा है अते छेती वह ठंडा हो जाएगा। ब्राह्मण मरिया पिया है, उसनू नाग नहीं डंगया होवेगा। तेरी घोड़ी ए वे, इस ते चढ़ जा, असीं तैनू रातों रात तेरे पिंड पहुँचा देंदे हाँ। तेरे पुत्र नू उस नाग तो बचाउणा बिल्कुल असंभव है। वह उसनू मना के मुख रस्ते ते ले आए, पर वह कहण लगी, नहीं भरावो, नहीं, मैं तुहाडे नाल नहीं जा सकदी। जिस नाग ने मेरे बच्चे नू डंगया है वह मैनू भी डंग लवे, मैं अपने बच्चे नू छड़ के नहीं जा सकदी। ये कहिंदिआं उह अनेरी दी तरह उस थां वल वापस मुड़ी जिथे कि उसका बच्चा सी। नाग मां नू देखदिया ही एक पासे सरक गया। उस अपने बच्चे नू जा चुकिया ते अपनी हिक नाल घुट लिया। उस चुमणा नाल बच्चे नू नवा ही दिता। ब्राह्मण उत्थे मरिया पिया सी। उसने उसका अफसोस किया ते अपनी नीली घोड़ी ते चढ़ के वापस अपने पेके पिंड आ गई। आजड़ी उसनू छड़न आए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।